أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوات. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين ليستنقذ عبادك من الجهالة. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. آج کی رات یہ شب جمعہ اور پانچ روزہ جشن کی یہ محافل خاص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، آج کی رات خاص امام مظلوم کے لیے یہ ہے، اور شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ دنیا کے کسی بھی گوشے کا مومن ہو، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کر کے زیارت وارثہ کی شکل میں آقا حسین کو جو سلام کرتا، اس کے چند جملے آج کی تقریر میں خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ وہی جملے ہیں جو ابھی نماز کے بعد اور دعائے کمیل کے بعد پوری زیارت وارثہ ہم سن چکے ہیں. البتہ اس میں ایک جملہ زیارت اربعین کا بھی، اور زیارت اربعین کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایک حدیث ہر سال اربعین یعنی چہلم کے دن پڑھی جاتی، کہ جہاں امام نے یہ فرمایا کہ شیعہ کی پہچان پانچ باتیں ہیں، جس میں پہلی ہے 51 رکعت نماز اور دوسری ہے اربعین کی زیارت. تو اربعین کی زیارت کا ایک جملہ میں نے زیارت وارثہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ زیارت وارثہ کے تین چار ایسے جملے. صحیح معنوں میں سورہ رحمان کی جو آیتیں میں تین دن سے تلاوت کر رہا ہوں، صحیح معنوں میں اس کی تفسیر کا موقع تو آج ہی، کہ آیتیں اپنے پورے اعلان کے ساتھ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پہ مکمل ہوتی. لیکن چونکہ معصوم میں جو لاسٹ ویکینڈ ہے اس میں بھی آقا حسین کا ذکر ہو چکا ہوگا، تو میں ذرا سا فضائل کا جو ایک عام انداز ہے اس سے ہٹ کے کچھ گفتگو کرنا ہے. دو دن سے جو بات چل رہی تھی اس بات کو بھی آگے بڑھانا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے نقصانات جو بیان کیے جا رہے تھے اس میں سب سے زیادہ ہم ہی لوگ افیکٹڈ ہیں، اور وہ نقوی صاحب نے میری اسپیڈ کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد دلا دیا. مجھے اور اطمینان ہوا کہ اب میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا تاکہ 45 منٹ کا میٹر آپ کو مل جائے. میرے ذہن میں تو 45 ہے، تو میں 45 پڑھ رہا تھا، وہ تو ایک گھنٹہ بن گیا تھا. مجھے 45 پڑھنا ہے تو اب 30 پڑھنا پڑے گا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ، آپ نے دعائے کمیل میں بھی شرکت کی، کو معذرت کی ضرورت نہیں تھی نقوی صاحب کو دعائے کمیل اور زیارت وارثہ کی وجہ سے. پھر بھی ہم لوگوں نے کافی ٹائم کو مینٹین کیا، صرف 2 منٹ کی تاخیر ہوئی، تو وہ ٹیکنالوجی کا نقصان. اچھا، اب ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہر تقریر سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، جو حدیث قصہ میں ایک بہت बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, लेकिन एक बड़ा जिंदा मैसेज, और वो ये है कि मजलिस सुनना एक बात है, खुद मजलिस की बरकतें हासिल करना वो भी एक चीज। चुनाव हदीस किस्सा में है कि जहां हमारे शिया और मुहिब जमा होते हैं वहां अल्लाह ये बरकतें नाजिल करता। हफ्फत बिहिमिल मलाइका वस्तगफरत लहुम इला अय्यतफर्रकू, हाजत पूरी होती है, परेशानियां दूर होती हैं, ये इसकी शर्त यह है कि एक जगह आपको जमा होना। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं तो मजलिस का मैटर तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मजलिस की बरकतें नहीं मिलेगी। तो सिवाय इंतहाई मजबूर लोगों को ये मैसेज पहुंचा देना है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आने वाला जमाना और ज्यादा आदमियों को मस्जिदों और इमाम बारगाहों से दूर करेगा, और हो सकता कि किसी मौके पे यह ख्याल पैदा हो जाए कि ऑनलाइन अगर नमाज जमात दिखाई जा रही है तो हम अपने घर में बैठ के उसको ज्वाइन कर लें, क्या जरूरत है 40 मिनट की ड्राइव करके यहां पे आके जमात को ज्वाइन करने की। तो आपको वो बरकत नहीं मिल सकती, वो वादे नहीं मिल सकते, वो मलाइका की तरफ से दुआए रहमत नहीं मिल सकती, वो जो वादे हदीस किस्सा में, ये वादे हदीस किस्सा के अलावा हर उस तकरीर के हैं जिसमें जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता। तो ये तो एक जिमनी बात मैंने अर्ज कर दी, इसलिए कि दुनिया में आज जितनी भी मजलिसें होती हैं और महफिलें होती हैं वो सब आका हुसैन की कुर्बानी की वजह से हैं। तो एक मैसेज आज की इस तकरीर में ये मिल जाए। टेक्नोलॉजी का दूसरा नुकसान, और वो खास तौर पे वो हम लोगों के लिए, और वो नुकसान ये है कि जहां भी हम जाते हैं तकरीर करते हैं पता चलता है ये फुला मोमिन आ, ये फुला मोमिन मौलाना, या बहुत ज्यादा हम लोग इंटरनेट पर आपकी तकरीरें सुना करते हैं। अब इंटरनेट पे जो तकरीरें सुन ली जाती हैं, मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो 20 साल के बाद दोबारा मासूम में आ रहा हूं। 20 साल मैंने दुनिया भर में जहां जहां जो मजलिसें पढ़ी हैं, जो तकरीरें की, तो मुझे क्या पता कि मासूम में किस आदमी ने इंटरनेट पे क्या सुन लिया। मौलाना आपने तो वही पुरानी बात पढ़ दी, वही दोहरा दी बात, वही बात को रिपीट कर दिया, और ये तो वो लोग हैं जो सामने बात करते हैं, और जब पीठ पीछे बात करते हैं कुछ नहीं है इनके पास, को मैटर ही नहीं है। वही चार चीजें हैं हर जगह दुनिया में, जहां इनको सुनो इंटरनेट लगा के वही चीज पढ़ रहे हैं। तो अक्सर दो मौकों पे मेरा दिल चाहता, एक जगह इंतजामिया और एक जगह घर वालों से बात करने का, कि भाई जब कहीं कोई बुलाए तो दिल चाहता है कि इंतजामिया से कहूं कि पहले एक सर्वे कर लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं वो मेरी इंटरनेट की कहां कहां की मजलिसें सुन चुके हैं, ताकि उसको जहन में रखकर मैं उससे हटके कोई बात करूं। एक एक से पूछिएगा जो मजलिस में आने वाला है या सुनने वाला है कि कितनी तकरीरें तुमने कहां कहां सुनी। और एक दूसरी बात, अक्सर ईसाले सवाब मेरी स्पेशलिटी मानी जाती थी और अभी भी शायद मानी जाती है कि कब्र के मौजू पे बहुत पढ़ते हैं, अजाब का तस्किरा बहुत करते हैं, जहन्नम के बयान के बगैर इनका खाना हजम नहीं होता है। तो उस हवाले से ईसाल सवाब यानी किसी मरने वाले के स्वयं चेहलों बरस, यह मजलिसें मुझसे बहुत पढ़वाई जाती, और इसके अंदर यही एक गलती हो जाती भाई। मैंने एक बहुत मशहूर शख्सियत मेरे पास आई कराची की, 15 साल एक इमामबाड़े में कराची में मैं बैठ रहा हूं, और वह सिर्फ एक मजलिस की वजह से कि जी वो पता चला कि उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, और वो ये चाह रहे थे कि मैं स्वयं की मजलिस में पढ़ूं। अब एक खातून के स्वयं की मजलिस है तो जिक्र शहजादी का हुआ, और जब शहजादी का हुआ तो हिजाब का हुआ, तो जब हिजाब का हुआ तो बेहिजाबी का अजाब बताया गया। मुझे क्या मालूम था कि मरने वाली मोमिना पूरी जिंदगी बेहिजाब रही। अब मजलिस खत्म होने के बाद जो लोगों ने जाके उन साहब को बताया, पता है ये मौलाना आपके दुश्मनों से मिल गए, ये जो सारी मजलिस पढ़ी ना आज कि किस तरह बालों से बांध के लटकाया जाएगा और फरिश्ते कोड़े मारे जा रहे होंगे, ये खास आपकी वाइफ के बारे में पढ़ा जा रहा था। नतीजा ये निकला, वो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी कि 15 साल उस इमामबाड़े में मैं बैंड रहा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक सबक हो गया और दिल चाहा कि जब कोई मुझसे मजलिस पढ़वाने आए ईसाले सवाब की, मौलाना मेरे वालिद की मजलिस पढ़ दीजिएगा, मेरे बहन की मजलिस पढ़ दीजिएगा, तो एक रिक्वेस्ट करने का दिल चाहता था कि एक लिस्ट बना के दे दें कि वो जिंदगी भर कितने गुनाह करते थे, ताकि मेरी मजलिस में भूले से भी उन गुनाहों का तस्किरा ना हो। इसलिए कि अगर आपके वालिद शेव करते और मैं मजलिस में दाढ़ी की बात करूंगा, वो जो है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इस तरह से एक एक करके सारे इमामबाड़ों में मैं बैन हो जाऊंगा। तो हर मरने वाले के घर वाले एक लिस्ट बना के मुझे दिया करें कि ये गुनाह हमारी माँ किया करती थी, ताकि मैं अपने आप को उससे बचाऊं। आज की रात शबे जुमा, शबे जुमा तीन टॉपिक ऐसे हैं, अब ये इंटरनेट के हवाले से बात कर रहा हूं कि मैं दुनिया में किसी मौके पर कोई मजलिस पढ़ रहा हूं, मसलन पहला अशरा शबे जुमा तो एक आएगी ना, चेलुम का अशरा इस शबे जुमा तो दरमियान में आएगी ना, रमजान के 30 दिन चार या पांच शबे जुमा, शबे जुमा के तीन सब्जेक्ट इस्लाम ने ऐसे दिए कि मोमिनीन और मोमिनात की जिम्मेदारी है कि एवरी थर्सडे नाइट इसको सुने और उस पर गौर करें, और बयान करने वाले की जिम्मेदारी है कि एवरी थर्सडे नाइट लोगों को ये रिमाइंडर दे। ये तीन बातें, और तीनों बहुत ही अहम और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक। एक ये है कि एवरी शबे जुमा अपनी मौत और कब्र को याद करने की रात, शबे जुमा एटलीस्ट वीक में एक रात ऐसी निकालो जिसमें मौत को याद करो, और ये एक लफ्ज में गलत कह गया, मौत को याद करो, अपनी मौत नहीं, अपनी भी और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मौत, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मौत याद करो कि उन्हें कब्र में इस वक्त हमारे किस मदद की जरूरत। बाप और मां के लिए आदमी सोचता है ना कि मसलन वो हैदराबाद या कराची में है, बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या मदद चाहिए, दवा चाहिए तो लोग यहां से दवा भी कभी भिजवा देते हो। जो कब्र में पहुंच चुका है बाप या मां या भाई या बहन या दादा या चचा या फूफा, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, किस चीज की उनको जरूरत। और फिर अपनी मौत को याद करो कि एक दिन हमें भी कब्र में जाना। अब ये मौत खुद एक फुल फ्लेश टॉपिक है, हर शबे जुमा याद दिलाना है, मैंने इतना सा याद दिलाया, अभी एक रिवायत आने वाली है। दूसरा ये है कि एवरी थर्सडे नाइट ये याद करना कि जब जमाने का इमाम आएगा तो उसकी गैबत की आखिरी रात थर्सडे नाइट होगी, जुमे की सुबह जब भी इमाम आएंगे जुमे की सुबह ही तशरीफ लाएंगे, 99% यही एक्सपेक्टेशन। तो हर शबे जुमा याद करो कि शायद ये आखिरी शबे जुमा बनने वाली है जिसके बाद इमाम आ रहा है, तो इमाम को याद करो कि इमाम के हवाले से हमारी ड्यूटीज क्या। हम इस वक्त लावारिस नहीं है, हमारा एक प्रोटेक्टर है, हमारा एक गार्जियन है, हमारा एक सरपरस्त है, हमारा एक मुहाफिज है, हमारे मामलात की केयर टेकिंग करने वाला एक है, और उसी की वजह से आज तक हम जिंदा हैं। वरना 1400 साल में जितना खून हमारा बहाया गया, जितने लाशें हमारे गिराए गए, जितनी बस्तियां हमारी उजाड़ी गई, जिस तरह कैलकुलेटेड प्लानिंग के तहत कि इस प्लेनेट पर कोई शिया जिंदा न रहने पाए, और हर 100 साल के बाद ये जालिम कहते थे कि अरे तो और ताकतवर हो गई ये शिया, अरे ये तो इतने शहादतों के बाद और ज्यादा नुमाया होके आ गई। आज ही मसलन ईरान की जियारत करने के बाद जो हमारे कोयटा के मोमिनीन जायरीन की बस आई और उस बस के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 20 से ज्यादा मोमिनीन शहीद हो चुके हैं, ये वाकयात का एक सिलसिला जिसमें ये एडिशन है, आज के 20 मोमिनीन जियारत करके आ रहे हैं और शहीद किया गया, मगर एक ऐसा सिलसिला है जो हमारी हिस्ट्री पहली दफा पेश नहीं आया और आखिरी दफा भी पेश नहीं आया जब तक के इमाम हमारा नहीं आएगा। मगर जालिमों के ये सारे प्लानिंग और मंसूबे नाकाम हो रहे हैं क्योंकि हम लावारिस हैं। हमारा एक वारिस है जो हमारे मामलात का ख्याल कर रहा है, हर वक्त उसे याद करना है, लेकिन स्पेशली हर शबे जुमा। और तीसरी बात, एवरी थर्सडे नाइट, दुनिया में कोई मोमिन और मोमिना ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, दुआ हर मोमिन को हर वक्त करना है, लेकिन शबे जुमा चूंकि दुआ कबूल करने होने की खास रात, तो कहा गया कि वही दुआ जो वीक के बाकी 6 दिनों में तुम करोगे तभी अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन जिस तरह जगह के बदलने से दुआ की ताकत बढ़ जाती है। देखिए दुआ करने वाले भी हम ही होते हैं और दुआ को पूरा करने वाला अल्लाह भी वही अल्लाह होता, मगर शिकागो के मुकाबले में करबला में इमाम के रोजे में दुआ जल्दी क्यों कबूल हो रही, शिकागो के मुकाबले में खाने काबा का पर्दा पकड़ के दुआ जल्दी क्यों कबूल हो रही, दुआ तो हम ही कर रहे हैं, कबूल वही अल्लाह कर रहा, काबे का अल्लाह अलग शिकागो का अल्लाह अलग ऐसा तो नहीं, जगह बदलने से दुआ की ताकत बढ़ जाती। उसी तरह टाइम वक्त की वजह से भी दुआ की ताकत बढ़ जाती है, मंडे को भी हम ही ने दुआ मांगी उसी अल्लाह से मांगी, मगर यही दुआ जब हम मंडे को मांगेंगे ताकत कम है, शबे जुमा मांगेंगे ताकत ज्यादा। तो एवरी शबे जुमा अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, आज की दुआ आज की रात की दुआ में बड़ी ताकत। तो ये तीन मैसेजेस एवरी थर्सडे नाइट हर मोमिन को याद करना है और हर स्पीकर को अपने मजमे को याद दिलाना है। तो इंटरनेट पे जो मेरी तकारीर बहुत सुनते हैं उनको मालूम कि दुनिया में जब भी कोई भी ओकेजन मैं शबे जुमा बात कर रहा हूं तो ये तीन टॉपिक जरूर टच करता हूं, कहीं पे पूरी तकरीर हो जाती और कहीं पे आज की तरह से जो मैंने 5 मिनट आपके लिए 6 मिनट इतना सा बयान लेके रिमाइंडर सही मैं आपको देता हूं। और फिर आज मासूम के इस इमाम बारगाह में या सेंटर में जो हमारी तकरीर की मुनासिबत इमाम मजलूम उनकी सीरत के लिए, तो ये तीनों जो शबे जुमा के मैसेजेस बहुत अहम बहुत अहम। मसलन दुआ के हवाले से दो छोटे से जुमले, हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी दुआएं भी हैं, दुआएं कुमैले 15 मिनट में आज मुकम्मल हो गई वरना 25 मिनट लगते हैं, दुआएं मशलूल है, दुआएं जो अशन कबीर बड़ी स्ट्रांग दुआएं हैं लेकिन बहुत बड़ी। इमाम ने कहा कि वही अल्लाह जो बड़ी दुआएं कबूल करता है वही छोटी दुआ भी कबूल करता, कुछ बहुत ही शॉर्ट दुआएं बताई गई। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट दुआ कि अगर कोई आपकी लाइफ का प्रॉब्लम और वो हल ना हो रहा सिर्फ इतना सा जुमला कह दीजिए ये कंप्लीट दुआ, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साबिल हुसैन, ये खुद एक कंप्लीट दुआ है, ये खाली सलाम नहीं है, ये दुआ समझ के आप इसको अंजाम दीजिए और अपनी हाजत दिल में लेके आइए। यूनुस नक्काश के वाकये में 10th इमाम ने ये मैसेज दिया, वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया था सिर्फ इतने से जुमले। तो चूंकि बहुत पढ़ा लिखा मजमा है और बाकी खवातीन के हवाले से अक्सर ये रिपोर्ट मिल रही है कि शिकागो की बहुत सी औरतों ने इंटरनेट पे मुझे बहुत सुन लिया, तो यूनुस नक्काश का वाकया हर एक को याद होगा, लेकिन वाकया याद हो के याद ना हो ये वाली दुआ, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन, मरता हुआ हमारा बेटा है और तमाम डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उसके सराहने, एक बार ये जुमला पढ़िए फिर देखिए कि किस तरह से हुसैन की मदद आती, क्योंकि अल्लाह का एक वादा, अल्लाह का एक वादा। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा, कितने बेहतरीन अंदाज से अभी आका हुसैन के फजाइल बयान कर रहा था हुसैन की जबान, तो उसके अंदर एक सजदे के हवाले से बात आई कि हुसैन ने अल्लाह से एक वादा किया, लेकिन शहादत के हवाले से अल्लाह का एक वादा, हुसैन तुमने अपनी जान, ये ज्यादा एक्सप्लेन करके इस पॉइंट को कल बताऊंगा आका अब्बास के लिए, लेकिन बहुत ही मुख्तसर हुसैन, और ये बहुत मोतबर हदीस है, तुमने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, तीन वादे तो मेरे फौरन तुमसे और तो हैं बहुत सारे, और वो क्या वादे हर एक को मालूम, अल इमामा तहत जुर्रियत ही व शफा फी तुर्बत ही वल इजाबता तहत कुब्बत ही, हुसैन इमामत अब तेरी नस्ल में मखसूस कर दी गई, अब जितने इमाम होंगे वो सब तेरी औलाद में हो, व शफा फी तुर्बत ही और तेरी तुर्बत और मिट्टी को अब खा के शिफा बना दिया गया, और इजाबता तहत ही तेरे रोजे डोम या गुंबद के नीचे जो दुआ की जाएगी मैं उस दुआ को फौरन कबूल करूंगा, या आका हुसैन से अल्लाह का एक स्पेशल वादा। ये तीन वादे, और कहीं टाइम कम की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि ये वाले वादे वो हैं जो दूसरे मासूमीन से भी अल्लाह ने नहीं किए, खाके शिफा सिर्फ करबला की मिट्टी है और किसी भी हरम की मिट्टी खाके शिफा नहीं, इमामत सारी हुसैन की औलाद में आई। हाँ, दुआ कबूल हर जगह होती है लेकिन खास हुसैन से वादा, तो आज की रात दुआ की रात है, एक बेहतरीन दुआ, शॉर्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साबिल हुसैन, सेहत का मसला हो, औलाद का मसला हो, रोजी का मसला हो, इमिग्रेशन का मसला हो, खानदान के झगड़ों का मसला हो, औलाद के मसले हो, बेहतरीन पूरा पूरा अशरा है मेरा दुआ के उनवान पर, तो एक तकरीर का भी एक छोटा सा हिस्सा ये बता रहा हूं कि आज की तकरीर जिन आका हुसैन के हवाले से है, आज शबे जुमा के तीनों मैसेज उनकी जिंदगी के अंदर। दूसरी बात, कब कयामत, और जो जुमला मैं 2 दिन से कह रहा था उसी जुमले को आज रिपीट करता हूं, हुसैन इस दुनिया के सामने आए अली और फातिमा की शादी के नतीजे, ये शादी हुई چاہے تاریخ کا جملہ میں کہہ دوں کہ شادی ہوئی، چاہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دوں کہ مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا ملائے گئے۔ شادی کے اگلے دن، اچھا مولا علی اور شہزادی فاطمہ کی شادی میں نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی اس وقت نہیں ہوئی، نکاح کی ڈیٹ الگ ہے، رخصتی الگ ہے، رخصتی ہوئی، اور اگلی صبح کو مولا مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک جملہ صرف اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، ورنہ ایک جملہ مکے اور مدینے میں میں بہت ڈیٹیل سے کہتا ہوں، ایک جملہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، علی بھی اور رسول ہی کے ساتھ رسول کے حجرے میں پلے بڑھے، تو جب شادی ہوئی اور رخصتی کا موقع آیا تو پیغمبر جہاں علی سے یہ کہا کہ مہر کا انتظام کرو، زیرہ فروخت کی، اور بزنس کرنے والوں نے وہاں بھی اپنا گر دکھایا، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، نورب الاول کا۔ اور جہاں علی سے یہ کہا کہ ولیمے کا انتظام کرو، وہاں یہ بھی کہا، جب تو علی رسول ہی کے حجرے میں رہتے ہیں تو یہ بھی فرمایا کہ اب دلہن جو رخصت ہو کے آ رہی ہے تو ایک مکان کا انتظام کرو۔ ٹیمپریری صحیح، مولا کائنات کو ایک مکان رینٹ پہ لینا پڑا، مسجد النبوی کے گیٹ نمبر 1 باب السلام کے سامنے۔ پہلے تو پراپر تھا بھی، اس کی زیارت بھی ہوتی تھی، اب تو خیر یہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ تو بارات باقاعدہ رخصت ہو کے گئی، ورنہ تو یوں دیکھیں تو بارات کا تو کنسپٹ ہی نہیں۔ رسول ہی کے حجرے میں علی بھی رہتے ہیں، دیوار کے برابر والے ایک کمرے میں فاطمہ رہتی، لیکن نہیں، باقاعدہ ایک مکان کا انتظام کیا گیا۔ تو میرے مولا بارات لے کے وہاں گئے، یعنی بارات لے کے مسجد میں آئے، دلہن کو رخصت کرا کے لے گئے، اور اگلی صبح پہنچ گئے فجر کے وقت۔ تو پیغمبر نے ایک سوال کیا، بہت اہم یہ سوال ہے، اس لیے کہ یہ سوال کا اسٹائل ہی بتا رہا کہ یہ سوال علی سے تو کیا جا رہا لیکن مقصد علی نہیں ہے، مقصد ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کو سنانا۔ نارملی یہ سوال شادی کے اگلے دن بہت ہی جو قریبی دوست ہوتے ہیں یا دلہن کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اسلام میں شادی ایک بہت ہی زیادہ مقدس رشتہ، یہ کوئی خالی پلیجر یا پاس ٹائم ٹائپ کی چیز نہیں۔ مسجد میں علی انٹر ہوئے، مسجد نماز کے لیے بھری پڑی ہے کیونکہ رسول خدا نماز کے لیے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک بار علی کو دیکھا، قریب بلایا، کہا علی تم رات گزار کے آ رہے، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، یہ رات کیسے گزری؟ دوست پوچھا کرتے ہیں نا اپنے دوست سے، یہ دلہن کی سہیلیاں پوچھا کرتی ہیں نا۔ اب اہل بیت کا مسئلہ ہے، کہیں بات بےہودہ نہ ہو جائے اس لیے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ بھری مسجد، اور فاطمہ کے لیے مولا نے جملہ کا، میں اکثر کہتا ہوں فضائل کی ہزار کتابیں ایک طرف، مولا کا یہ جملہ ایک طرف، کہا یا رسول اللہ نعم العون للعبادہ، فاطمہ کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے بہترین اپنا مددگار پایا، اون مانے مددگار، فاطمہ عبادت خدا میں میری بہترین مددگار۔ یہ کسی بھی بیوی کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کتنی حسین و جمیل، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کتنی دولت اور مال، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، وہ گھر کے خرچے میں کتنا شیئر کرے گی، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کون سی ہے، پہلے دیکھنا ہے جس کو لے کے آ رہے ہو یہ عبادت خدا میں مددگار بنے گی، یہ عبادت خدا میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ نعم العون للعبادہ، شادی کے اگلے دن مسجد النبوی کے فجر کے مجمع میں میرا مولا شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت بتا رہا کہ وہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ یہاں سے ایک الگ ٹاپک چھڑ جاتا ہے، سلیکشن آف اسپاؤس، اور بہت اہم لیکن بہت لیندی ٹاپک ہے، میں اس وقت ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے یہ جو جملہ کہا تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا علی چند گھنٹوں کے اندر، بھئی 10 سال رہے ہوں ایک ساتھ، پھر میرے مولا یہ جملہ کہیں، چلے 4-6 مہینے کے بعد کہیں، چلے 1 ویک کے بعد کہیں، رات کو یہ دلہن پہنچی، فجر کے قریب مولا مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے۔ اب تھوڑا سا ایک ایسا جملہ کہ جو شاید آخری 2 تقریروں میں زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جائے، شادی کی اگلی صبح کو دولہا نماز پڑھے یہ کنسپٹ نمازی گھرانوں میں بھی نہیں، اور دلہن نماز پڑھے وہ تو بیچاری اتنی میک اپ میں لطیف پھندی ہوتی ہے، یہ نمازی گھرانوں میں بھی نہیں۔ اب مزید یہ باتیں جو ہے نا بعد میں ہوں گی کہ ہماری شادیاں کیسی ہونی چاہیے، पहली तकरीर में मैंने क्या कहा था कि ये जितने जश्न हैं शाबान के, ये सारी की सारी खुशी हमारे सामने आई अली और फातिमा की शादी के नतीजे, चाहे वो अब्बास की विलादत हो, चाहे वो सज्जाद की विलादत हो, चाहे वो हुसैन की विलादत हो, चाहे वो अकबर की विलादत हो, चाहे वो जैनब की विलादत हो, चाहे वो कासिम की, सब औलादे अली हैं। तो असल वो शादी है, तो कुछ शादी के हवाले से हमारे घर में क्या होना चाहिए, लेकिन आज इतना टाइम नहीं। तो खुलासा, अच्छा अब मैं अपना एक जुमला वापस ले रहा हूं मजबूरन, 30 मिनट में मैं बात नहीं खत्म कर पाऊंगा, अभी बात शुरू भी नहीं हुई। लेकिन लोगों ने पूछा कि या अली, सिर्फ चंद घंटों के बाद जो आपने ये कमेंट पास किया, अगर इलम अच्छा ना हो तो फातिमा की जो फजीलत बताई, इल्म इमामत की वजह से बताई, फातिमा की पुरानी जिंदगी, 9 साल फातिमा उसी घर में रही जिसमें अली रहे, का नहीं शादी के बाद की वजह, और वो क्या खसूसियत, शबे जुमा कब्र को याद करने की रात, मुनकिर नकीर आएंगे, फिशार कब्र होगा, अजाब खुदा आएगा, हर एक पर नहीं आएगा लेकिन गुनाहगारों पर। चुनाचे अपने मौजू में रहकर देखिए, शबे जुमा का दूसरा पैगाम भी पहुंचा रहा हूं, और मौजू में मेरा वही है कि अली की शादी और हुसैन का इस दुनिया में आना। कहा कि जब मैं रुखसती के बाद अपने घर में लेके पहुंचा और मेरे मौला की वालिदा यानी शहजादी की सास फातिमा बिनते असद जिंदा थी, तो तरीका वही है कि औरतें रिसीव करती हैं, फिर कमरे में बिठाया, फिर जब मैं गया तो मैंने देखा कि फातिमा जरा सी परेशान नजर आ रही। कुछ जुमले ऐसे हैं जो मासूमीन की शान के खिलाफ हैं, लेकिन हमें और आपको मैसेज देने के लिए स्टाइल मासूमीन ने ऐसे ही इख्तियार किया। आपको मालूम होगा इसलिए कि साहिबान ईमान का मजमा कि निकाह से लेकर रुखसती के दरमियान जो टाइम पीरियड था, अरब की औरतों ने शहजादी के पास आ आके मौला की बहुत बुराइयां की। ये जो लगाई बुझाई औरत की खास बात होती है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जब कहा गया दो औरतें बैठी और दोनों खामोश और गूंगी भी नहीं, गूंगी हो तो अलग बात है, तो वो जो है वहां रसूल के जमाने से सिलसिला चल रहा था, और खास तौर पर अली की गुर्बत को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। हर जमाने की औरतें एक ही जैसी होती हैं, एक ही नेचर कि तुम्हारे बाप ने क्या जुल्म कर दिया, इतने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए और कबीलों के सरदारों के रिश्ते आए और पैसे वालों के रिश्ते आए और कितने ही साहिबान दौलत और गनी और साहिब सरवत लोगों के रिश्ते आए और तुम्हारी शादी ऐसे से कर दी जिसके घर में फांसे। बाकायदा एक दिन नहीं, निकाह से लेकर रुखसती तक। तो अब मौला ने, अब मौला को भी मालूम है कि हकीकत क्या है, शहजादी को भी पता है, लेकिन मैसेज हमें दे रहा, घबरा के कहा कि बिनते रसूल आप बहुत परेशान नजर आ रही, शादी की रात तो लड़की बहुत खुश होती है, तो इसकी वजह कहीं इस घर की गुर्बत तो नहीं। शहजादी ने कहा नहीं नहीं आया अबुल हसन, मैंने सोचा कि 9 साल मैंने अपने बाबा के घर में गुजारे। अच्छा 9 साल फिर शहजादी ने शौहर के घर में गुजारे, 18 साल की थी जब वफात या शहादत हुई, लेकिन अभी तो आई है तो कहा कि 9 साल मैंने बाप के घर में गुजारा, आज मेरी जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, बिल्कुल नया घर, बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से गोया जिंदगी शुरू हो। टर्निंग प्वाइंट होता है हर मर्द और औरत की जिंदगी में शादी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब इसके बाद फिर एक वक्त आएगा जब मैं कब्र वाले घर में जाऊंगी। अब देखिए शादी है और कायनात की सबसे अफजल शादी, और जिक्र क्या हो रहा है, कब्र का जिक्र हो रहा है, वो शादी जिसके नतीजे में पहले हसन हमारे सामने आए फिर हुसैन, उस शादी का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा कब्र। कहा कि जिस तरह मैं बाप के घर से शौहर के घर में आई, शौहर के घर से एक दिन अपने घर कब्र में जाऊं, और इस जब मैं इस घर में आई तो आपने घर का सारा सामान तैयार किया, शहजादी के जहेज की लिस्ट तो हमारे यहां मजलिसों में अक्सर पढ़ दी जाती है, जिसको मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन मौला ये सामान लेकर आए। जब मैं इस घर में आई तो इस घर के लिए हमने सामान तैयार किया, तो जब मैं कब्र में जाऊंगी तो कब्र के लिए भी तो हमें कोई सामान तैयार करना चाहिए। यह मौत को शादी के दिन याद दिलाना, साहिबान ईमान मौत को मौत के दिन सुनने को तैयार नहीं होते, स्वयं की मजलिस में उनको मौत का जिक्र अच्छा नहीं लगता है, बरसी की मजलिस में जो मौत उसमें, और शहजादी शादी की रात। अच्छा जिस तरह से दोनों की बातचीत हुई और लोगों को पहुंचाई गई, उससे साफ लग भी रहा कि ये अपने लिए नहीं है, ये हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों के लिए है। ورنہ کیا علی کو یہ نہیں پتا جو فاطمہ بتا رہی ہے؟ کیا فاطمہ کو نہیں معلوم؟ جملہ سنیے، کہا کہ جب میں شوہر کے گھر آئی تو سارا انتظام کیا اس گھر کے لیے، گھر سمیت، اسی لیے میں نے شروع میں پڑھا کہ رسول نے کہا اے علی تمہیں گھر بھی الگ لینا، تو جب اس کے بعد مجھے تیسرے گھر میں جانا اور سب سے زیادہ تو وہیں پہ رہنا ہے، تو وہاں کے لیے بھی تو کوئی انتظام کیا جائے۔ آئے ابا الحسن، ہم اور آپ اپنی آج کی زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ کریں، تو آئیے میں بھی نماز پڑھتی ہوں اور آپ بھی نماز پڑھیے۔ عام زندگی میں لوگ، کچھ لوگ ہیں جو نماز کے ذکر سے الرجک ہیں اور چڑ جاتے ہیں۔ مولانا شب عروسی ایک بستی تھی ہمارے پاس، وہ بھی آپ نے نہ چھوڑی، اس میں بھی ہم نمازیں ہی پڑھتے رہے۔ یو پی کے سادات اور یو پی کے گھرانے، کیونکہ میرا اپنا تعلق تو یو پی سے، ٹھیک ہے میں پاکستانی نیشنل کراچی میں پلا بڑھا، لیکن یہ جو کلچرل چیزیں ہیں یہ تو ماں باپ نانا نانی دادا دادی سے ملتی، تو ہمارے یہاں خاندانوں میں آج بھی شادی ہوتی تو دلہن کے آنچل پر دولہا کو نماز پڑھوائی جاتی، روایت تو یہی روایت، لیکن وہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ دولہا جو ہے وہ دلہن کے آنچل پہ نماز پڑھے، اور اکثر دولہا اور دلہن وہ والی نماز بغیر وضو کے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز نماز کے طور پہ تو تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ تو ایک رسم آ رہی ہے خاندان میں تو پڑھی گئی، لیکن ہر رسم کی کوئی بنیاد۔ شہزادی نے مولا سے کہا کہ اپنی نئی زندگی جو قبر والی ہے اس کے لیے ہم سامان جمع کریں، جیسے اس شادی کے بعد جو جہیز میں چکی آئی، کچھ برتن آئے، کچھ کپڑے آئے، کیونکہ یہ شوہر کے گھر میں یہ چیز کام آتی، قبر میں یہ چکی اور کپڑے اور برتن اور زیور کام، وہاں نماز کام آئے گی۔ تو پوری رات علی اور فاطمہ نے نماز میں گزاری، صبح کو علی گئے اور کہا نعم العون للعبادہ، کیا کہنا اس شریک حیات کے جو شادی کی رات بھی نہ خود نماز چھوڑے نہ شوہر کو نماز چھوڑنا دے بلکہ نمازیں بڑھا دے۔ اب وہ اپنے لیے، علی اور فاطمہ کے لیے نہیں، لیکن ہماری شادیاں کیسے، یہ رول ماڈل جو ہیں تو ایک ان کے اس کا بھی تو ماڈل دینا ہے نا کہ شادی، تو شادی خالی نماز نہیں، یہ کہہ کے نماز پڑھی گئی کہ قبر کو یاد کرنا، اور آج کی شب جمعہ آقا حسین کی ولادت، دونوں مناسبتیں اس شادی میں جمع ہو گئی جس شادی کے نتیجے میں حسین آئے۔ اور جب حسین اس شادی کے نتیجے میں آئے تو آج کی رات کا جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ بھی اس کے اندر کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ تیسرا سبجیکٹ آج کی رات کا کیا ہے؟ دعا، قبر اور امام زمان۔ جب مولا حسین کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، آج 3 شعبان نہیں، وہ تاریخ گزر گئی، لیکن آج 5 روزہ جشن میں جو خاص مناسبت دی گئی وہ آقا حسین کی ولادت، تو ایک عجیب جملہ ہے جو اکمال الدین میں شیخ صدوق نے لکھا۔ اکمال الدین امام زمانہ کے ٹاپک پہ شیخ صدوق کی وہ کتاب جو امام زمانہ نے شیخ صدوق کو لکھوائی، جب وہ مشہد کی زیارت کو گئے تھے اور ان کو امام ملے تو کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا باپ اولاد نہیں ہو رہی، کئی سال گزر گئے تھے، اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، یہ اس وقت تک امام کی غیبت صغرا تھی، اور تم ہماری دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو تو کم از کم اتنا ہمارا حق ادا کرو کہ ہمارے موضوع پر ایک کتاب لکھو۔ اکمال الدین، اردو ٹرانسلیشن تو ہو گیا بلکہ شاید انگلش بھی ہو گیا، تو اس کے اندر یہ روایت کہ جب آقا حسین کی ولادت ہوئی، آدھی روایت آپ سنتے تو اللہ کے رسول حسین کو لے کے روئے، کربلا کا پورا واقعہ سنایا، تبھی شہزادی فاطمہ کا وہ جملہ کہ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہ میں نہیں ہوں، ابو الحسن ہوں گے؟ نہیں ہوں، تو میں ہوں گی، تم بھی نہیں ہوں، تو میرے حسین کا ساتھ کون دے گا اور اس کو پر روئے گا کون؟ کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے ساتھیوں میں بوڑھوں پر، جوان جوانوں پر، بچے بچوں پر، عورتیں عورتوں پہ روئیں گی۔ اس کا آخری جملہ یہ کہ بیٹی مگر یاد رکھ اللہ اس خون کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور حسین کے خون کا انتقام لے گا حسین کے اس وارث اور بیٹے سے جو ہماری نسل کا آخری امام، اور اس وقت حسین کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ اپنے قاتلوں سے صحیح معنوں میں اس وقت جنگ کرے گا۔ یہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ ایک عقیدہ، اس کا نام ہے عقیدہ رجت۔ اس کا خلاصہ کیا کہ 3 شعبان سن 3 ہجری یا 4 ہجری کو آقا حسین اس دنیا میں آیا، 10th ऑफ मुहर्रम 61 हिजरा को आका हुसैन शहीद हुए, लेकिन एक बात, इमाम जमाना के बाद हुसैन दुनिया में वापस दोबारा आएंगे और खाली अकेले खुद नहीं आएंगे, अपने पूरे खानदान के साथ आएंगे, और खाली अपने खानदान के साथ नहीं आएंगे, अपने दुश्मनों के साथ आएंगे, और उस वक्त दोबारा करबला का जिहाद होगा, और वो करबला का जिहाद फ्री हैंड होगा। उस वक्त हुसैन पे पाबंदी ये नहीं होगी जो पहले करबला में थी कि तलवार ना चलाना, या बात पे ये पाबंदी नहीं होगी कि तलवार ना चलाना, चुनाचे उस वक्त सही मानों में करबला होगी। हुसैन का इस दुनिया में पहली बार आना 3 शाबान, और हुसैन का इस दुनिया में दूसरी बार आना जुहूर इमाम के बाद। और अब जरा जुमले सुनी जो अभी अभी मैंने खुतबे के बाद भी पढ़े और आपने ज़ियारत वारिसा में मुझसे पहले आप सबने मिलकर पढ़े थे। वह उशहदुल्लाह, आका हुसैन की ज़ियारत पढ़ रहा हूं आका हुसैन की विलादत की तकरीर की मुनासिबत से। वह उशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाअहु व रुसुलहु, आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देता हूं और अपना विटनेस बनाता हूं अल्लाह को और 1,24,000 अंबिया को और तमाम मलाइका को। इतना बड़ा मैटर और आपने इतने सारे विटनेस लाके खड़ा कर दिए कि मैं गवाही दे रहा हूं, और वो गवाही देते वक्त आपने कहा उशहदुल्लाह, अल्लाह को मैं विटनेस बना रहा हूं, वह मलाइकतहु तमाम फरिश्तों को, वह अंबियाअहु व रुसुलहु, 1,24,000 अंबिया को आपने अभी गवाह बनाया। किस बात पे आपने गवाह बनाया, मैं आपसे ये पूछ लूं। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें आप कभी ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं करेंगे, जिस दुनिया में आप रहते हैं उसमें आप किसी भी लिखे हुए पेपर पे साइन नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं, और अगर पढ़ने में कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई स्पेनिश में जुमला लिखा है तो आपने कहा पहले मुझे इसका ट्रांसलेशन बताओ फिर मैं साइन करूंगा, जो चीज मुझे मालूम ही नहीं है मैं कैसे इस पर साइन करूं। और अभी अभी आपने ज़ियारत वारिसा, और फर्स्ट टाइम नहीं, जब से आप पैदा हुए ज़ियारत वारिसा सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपने कहा मैं अल्लाह को और मलाइका को और 1,24,000 अंबिया को गवाह बनाता हूं। तो किस बात पे आपने गवाह बनाया, इतने बड़े बड़े नाम आप किस बात पे लेके आ गए। अन्नी बेकुम मोमिन, आए आका मैं आप पर और आपके पूरे घराने पर ईमान रखता हूं। ठीक, हम इससे भी बड़े गवाह अगर मिल जाते तो ले आते, हमें ईमान है हुसैन। वबे इयाबेकुम मोकिन, इयाब के माने अरबी में है टू रिटर्न बैक, और मुझे आपके वापस दुनिया में आने पे मोकिन यकीन कामिल है, मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूं। अभी आपने अल्लाह को गवाह बनाया कि मुझे हुसैन के दोबारा इस दुनिया में आने पे यकीन, और ये रिवायत फर्स्ट टाइम 3 शाबान को रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा मेरा हुसैन अभी आया है और जब वो आखिरी इमाम आएगा उसके बाद हुसैन आएगा, और अकबर के साथ आएंगे और अब्बास के साथ आएंगे और सानिया जहरा के साथ आएंगे और सकीना के साथ आएंगे और असगर के साथ आएंगे, और खाली आना नहीं पूरे आका हुसैन के हालात कि फिर वो आएंगे जब इमाम जमाना शहीद होंगे सीरिया में। सीरिया जो है इमाम जमाना के हवाले से, सीरिया बहुत ही ज्यादा एक अहम जगह, नो डाउट कि आज का सीरिया नहीं 1400 साल पहले का सीरिया, 1400 साल पहले सीरिया एक बहुत बड़े इलाके का नाम था जिसमें लेबनान भी पार्ट ऑफ सीरिया था, इसराइल भी पार्ट ऑफ सीरिया था, पैलेस्टाइन भी पार्ट ऑफ सीरिया था, इराक के कुछ हिस्से भी पार्ट ऑफ सीरिया थे, टर्की के कुछ हिस्से भी पार्ट ऑफ सीरिया थे, लेकिन बहरहाल जो आज का सीरिया है ये तो था ही क्योंकि डमस्कस का नाम। तो बहुत अहम हालात हैं सीरिया के उन रिवायतों में जो आखिरी जमाने की रिवायत है, और बहुत सारी चीजें इस वक्त मैचिंग भी कर रही हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा टॉपिक नहीं, इसके बाद जब मैं डेलेस में जाऊंगा तो चूंकि वहां पे मैं 15 शाबान की तकरीरें करूंगा ये बात वहां पे आएगी। लेकिन अब मैं आसानी के साथ आपकी जान छोड़ने वाला भी नहीं हूं, 20 साल बाद तो आ गया हूं, लेकिन अब आता रहूंगा। अच्छा, तो खुलासा ये है कि मौका मिलता भी रहेगा, अच्छा मौका मिलता भी रहेगा और ये बातें कभी और आती रहेंगी। आज की तकरीर आज की मुनासिबत से मुझे रखना, आका हुसैन के हालात में रखना। तो अब इमाम जमाना जब सीरिया में शहीद किए जाएंगे एक औरत के हाथ, पहले 30 साल पहले जब मैंने कराची में पढ़ा था तो दांतों पसीना आ गया था, मोमिनीन को समझाना पड़ रहा था, लोगों से चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, रेफरेंस देना पड़ रहे थे, बहुत सारे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मालूमात लोगों की हो गई है, यूट्यूब के जरिए भी, किताबें भी बहुत सारी उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, कि अब हम लोग ये पढ़ते चले जाते हैं और हमें इसकी वजाहत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब तो उल्टा मसला होता, कुछ ज्यादा ही लोगों की नॉलेज आ गई है। चुनाचे अक्सर ये खबर आती है, मौलाना हमने सुना है मलीहा पैदा हो गई, वो जो इमाम को कत्ल करेंगे। पहले तो ये था कि सुनाई नहीं कि इमाम शहीद किए जाएंगे, अब इतना लोगों को पता है कि शहीद होंगे, जो औरत शहीद करेगी उसका नाम क्या है और उसकी डिटेल क्या है और कैसे शहीद करेगी, और अक्सर ये र्यूमर आती रहती कि वो औरत पैदा हो गई। तो खैर, खुलासा यह है कि जब इमाम शहीद हो जाएंगे तो इमाम को गुस्लो कफन इमाम देता, तो रिवायतों में इतनी डिटेल है कि जमाने के इमाम को गुस्लो कफन भी आका हुसैन अपने हाथ से देंगे, नमाज जनाजा आका हुसैन पढ़ेंगे, अपने हाथ से इमाम जमाना को दफन करेंगे, आइदर इन करबला और इन मदीना, रसूल खुदा के बराबर एक कब्र की जगह खाली। आपको तो याद है, क्योंकि इमाम हसन ने वसीयत की थी मुझे नाना के पहलू में दफन करना, दफन तो नहीं होने दिया गया लेकिन वो जगह अब तक मौजूद है। तो एक रिवायत यह है कि वहां जमाने के इमाम दफन होंगे या करबला, और ये सब इमाम आका हुसैन करेंगे, और फिर आका हुसैन इमाम जमाना के बाद 70 साल हुकूमत भी करेंगे इस दुनिया में, और फिर उनकी नेचुरल डेथ भी होगी। तो ये सारी डिटेल इमाम हुसैन के बारे में पैगंबर के उस जुमले की वजह से हमारे सामने आई, जो 3 शाबान को शहजादी फातिमा के हुजरे में हुसैन को गोद में लेकर पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब हुसैन के हालात बताए तो मां फातिमा रोने लगी, तो पैगंबर ने तसल्ली दी कि वो मसाइब करबला के बाद फिर वो जमाना भी आएगा कि तेरा यही लाल 70 साल से ज्यादा हुकूमत करेगा और इमाम जमाना के फौरन बाद इनकी हुकूमत होगी, और हम और आपकी अकीदा भूलने ना पाए। तो जियारत वारिसा का पाठ बनाकर एवरी शबे जुमा हमारी जबान पे इसको जारी करवा दिया, कि हर अब खुद अपनी जबान पे, यानी एक साहब ने मुझसे कहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि मौलाना ये आप कहां से पढ़ रहे हैं, क्या रेफरेंस है, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ रहा, मैंने तो अभी आपसे सुना था, तो आप ही की जबानी सुन के मैं पढ़ रहा हूं, फर्क यह है कि आपने अरबी में पढ़ा, मैंने इसको उर्दू में कर दी। जबाने बदलने से तो स्टेटमेंट तो नहीं चेंज, आप ही अभी कह रहे थे और बड़े जोरों शोर से कह रहे थे कि उशदुल्लाह व मलाइकतहू व अंबियाहू व रुसुलहू अन्नी बिकुम मोमिन व बिया बिकुम मोमिन। बाज़ात लोग समझते हैं कि लैंग्वेज चेंज होने से मसला भी बदल जाता, फुला साहब शराबी हैं बड़ा स्ट्रांग लफ्ज लगता, वो ड्रिंक करते हैं, अब अंग्रेजी में जाके गुना जरा छोटे छोटे हो जाते, इतने बड़े नहीं रखते गुना जैसे जो है उर्दू में या अरबी में या फारसी में लगा करते थे। तो लेकिन बहरहाली तो हमारा कल्चर है, इस्लाम में तो ऐसा नहीं। तो मैंने कहा मैंने आपसे ही सुन के अभी अभी मजलिस में पढ़ा, तो हर मोमिन की जबान पे जारी करा दिया गया ताकि ये इत्मीनान रखो कि आका इमाम जमाना जब आएंगे तो वह अकेले नहीं आएंगे, आका हुसैन के साथ आएंगे, और सही मानों में जश्न विलादत तो हम उस मौके पर ही मनाएंगे, मगर आका हुसैन उनका खाली नाम ले लो ये बेहतरीन दुआ, शब जुमा दुआ की रात, आका हुसैन की विलादत से पहले जो शादी हुई जिसके नतीजे में कुरान ने कहा यखरुजु मिनहुम अल्लुलु वल मरजान, हुसैन पैदा होने वाला है, उस शादी की रात कब्र का तस्किरा करके कब्र की तैयारी की गई। हमारे यहां कुछ लोग मौत को याद भी कर लेते हैं, हाँ हाँ मौत बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह बचाए तौबा तौबा, लेकिन बस इसके आगे तैयारी कुछ नहीं होती। तो इतना अहम मैसेज के मौत को याद करके और फिर इमाम जमाना और आका हुसैन, विलादत हुसैन के दिन जमाने के इमाम को याद किया गया, तो आका हुसैन की विलादत का जश्न तो ये बेहतरीन मौका कि जहां पे इंसान जमाने के इमाम को याद करे, और जो बाकी पैगाम मैंने आपके सामने रखे उनको, और आका हुसैन के हवाले एक मैं बात, वो जो कब्र की तैयारी की बात आ गई, कब्र में इंसान के सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज तो मोहब्बत अहले बैत, लेकिन मोहब्बत अहले बैत के बाद जिसका नाम लिया गया वो नमाज। हमारे यहां यह इबादत बड़ी हकीर बना दी गई, जो पढ़ते भी हैं तो बहरहाल एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सही मानों में ये पता नहीं कि नमाज है क्या थी। सिर्फ एक रिवायत जो मैंने 92 मासूम सेंटर ही में पढ़ी, लेकिन जब ये एडिशन पे था उस वक्त वो रिवायत मैंने पढ़ी थी, एक मिनट की रिवायत। शबे मेराज 27th ऑफ रजब नमाज की सालगिरह, जो चीज दुनिया में जब सामने आती है तो उस दिन उसकी एनिवर्सरी या सालगिरह होती है। बच्चे की बर्थडे होती है तो सालगिरह मनाते हैं, मैरिज शादी की होती है। कुरान की सालगिरह है शबे कदर 23rd ऑफ रमजान, और नमाज की सालगिरह है मेराज के रसूल खुदा आसमान पे गए थे तो 5 नमाजों का तोहफा लेकर। लेकिन उस वक्त तक ये 5 नमाजें, जरा मुश्किल टॉपिक हो गया ना, लोग कह रहे होंगे बिलावजह हमने मौलाना से कहा 1 घंटा पढ़िए, वो 45 मिनट में जब रहते थे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, 45 के बाद फिर अब जो है ना, अच्छा रसूल खुदा मेराज की रात को वापस तोहफा लेकर आए नमाज का। बहुत इंटरेस्टिंग रिवायत है, कभी किसी और मौके पे पूरी रिवायत पढ़ूंगा। लेकिन उस वक्त एवरी नमाज 2 रकत थी, नमाजें बेशक यही 5 थी जो आज हैं, लेकिन रकतें 10 थी। और जब आका हुसैन की विलादत हुई तो 7 रकतें इसमें बढ़ा दी गई, जोहर की नमाज जो रसूलुल्लाह ने पढ़ी। देखिए फजर की नमाज पढ़ के आए थे तो फजर की एज इट इज रही, फिर हुसैन की विलादत के बाद पहली नमाज जो रसूल ने पढ़ी वो जोहर की पढ़ी। हमेशा 2 पढ़ते थे, उस दिन 4 पढ़े, और फिर जो असर की पढ़ी तो हमेशा 2 पढ़ते थे, असर की नमाज 4 हो गई, और मगरिब की नमाज 3 हो गई और ईशा की 4 हो गई। हुसैन की विलादत की खुशी में नमाज की रकतें भी बढ़ी, ये नमाज हुसैन का तोहफा। और जैसा अभी माशाल्लाह आप उस प्यारे बच्चे से प्यारा कलाम सुन रहे थे, सिजदे के आलम में रसूल थे और हुसैन नाना की पुश्त पे सवार हुए। अच्छा, हमारे यहां लोग बाज़ औकात गलत आर्गुमेंट करते, कहते हैं हुसैन मान लिया अब हमको नमाज की जरूरत नहीं, हुसैन के लिए तो रसूलुल्लाह की नमाज रोक दी गई। रोकी नहीं गई, बढ़ाई गई। आम दिनों में हम सिजदे में 1 बार सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे कहते, जब हुसैन नाना की पुश्त पे सवार हुआ तो 70 टाइम सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे ही कहा, यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आधे मिनट का सिजदा होता है, जब हुसैन आ जाता है तो सिजदा मसलन 10 मिनट का हो जाता है। इजाफा हुआ है सिजदे में, हुसैनी के लिए रकतें भी बढ़ी हैं, हुसैनी के लिए सिजदे भी बढ़े हैं। तो दुनिया का हर आदमी नमाज छोड़ सकता है, हुसैन का मानने वाला कभी नहीं छोड़ेगा। और नमाज क्या थी? नमाज एक कंप्लीट ट्रेनिंग है 21st सेंचुरी के अंदर बैठकर दीन पर अमल करने की। अब ये बात कल होगी, नमाज हुसैन की वजह से बढ़ी, शरीयत का लाना तो रसूल का काम। तो ये मसाइले शरीयत हुसैन की वजह से क्यों बन रहे? हाँ, इसके लिए हमको पर आखिरी 2 रिवायतें मैं सुना रहा हूं, फिर तो घंटा भी हो जाएगा। आधा घंटा मुझे पढ़ना था, 45 पर भी मैं पहुंचा था, 45 का भी फिर 60 हो ही रहा है। ये 2 आखिरी रिवायतें सुनिए। हुसैन भाई नमाज शरीयत का हिस्सा, शरीयत लाने के लिए तो रसूल को भेजा गया। 2 रिवायत, उम्मे ऐमन महल्ले वाले और पड़ोसी घबरा के रसूलुल्लाह के पास आए, या रसूलुल्लाह हम इसलिए आए हैं कि आप बाद में कहीं हमसे शिकवा या शिकायत ना करें। उम्मे ऐमन है कौन? उम्मे ऐमन रसूल खुदा की मां जनाबे आमिना की कनी थी, जनाबे आमिना की खिदमत करती थी। जनाबे आमिना जवानी में उनका इंतकाल हुआ, वो ट्रेवलिंग सफर में थी और रसूल खुदा सिर्फ 6 साल के अपनी मां के साथ सफर में थे। उम्मे ऐमन वो कनीज थी जो रसूल को वहां से मक्का लेकर आई, और जैसा कि वफादार कनीजों का तरीका होता कि रसूल के मां के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन ने मां की तरह से रसूल को पाला। एक तरीका होता है कि मालिकन का इंतकाल हो गया, वफादार कनीज उसकी औलाद को औलाद की तरह पालती है, जैसे शहजादी के घर में पिज्जा की मिसाल है। खैर पिज्जा तो रद्दे में बहुत बुलंद है, लेकिन उम्मे ऐमन पैगंबर बड़ा एहतराम करते, वैसे ही खाली अगर मां की कनीज होती तब भी एहतराम मां की वजह से। और इन्होंने तो सारी जिंदगी पैगंबर की खिदमत की, अब खासी बूढ़ी हो गई, रसूल के साथ हिजरत करके मदीने आई, और मदीने के एक महल्ले में इनका घर है। मैंने शायद पहली तकरीर में कहा था कि मदीना बहुत बड़ा शहर नहीं था उस जमाने में। उम्मे ऐमन के पड़ोस में जो लोग मर्द और औरतें रहते हैं, वो एक दिन सुबह को घबरा के रसूलुल्लाह के पास आए कि या रसूलुल्लाह हम इसलिए आए कि आप बाद में शिकायत ना करें। शिकायत किस बात की? कहा कि 3 दिन गुजर गए, ام ایمن مسلسل روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں، کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پانی بھی بہت مختصر پیتی ہیں، ہم کو تو لگ رہا ہے کہ کہیں مر نہ جائے وہ. اور آپ بعد میں ہم سے شکوا کریں کہ جب تمہارے محلے میں ام ایمن تھی اور تمہیں پتا تھا کہ ام ایمن کا مجھ سے کیا رشتہ ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا. اس لیے یا رسول اللہ ہم آئے، ہم سے ام ایمن کی حالت نہیں دیکھی جاتی، رونا اور رونا اور رونا اور رونا. پیغمبر نے کہا جاؤ ام ایمن کو بلا کے لاؤ. ام ایمن اب چھوٹا شہر مدینہ، کسی کی گلی میں رہتی ہوں گی، پیغمبر کی خدمت میں آ گئی. واقعا پیغمبر نے دیکھا کہ چہرے پر پریشانی کے انتہائی آثار. جملہ وہ تھا کہ آقا حسین شریعت رسول لے کے آ رہے ہیں، یا مسائل شریعت آقا حسین بتا نہیں رہے، بنا رہے ہیں. مسئلے بنانا الگ چیز ہے، بتانا الگ ہے، تو یہ تو رسول کا کام ہے. ام ایمن آئی، پیغمبر نے دیکھا واقعا بہت ہی کمزور لگ رہی، بہت ہی پریشان لگ رہی، آنکھوں میں آنسو جاری. کہا کہ ہے ام ایمن، میری ماں کی کنیز، کیا آپ کی حالت ہے، وجہ کیا ہے، اس طرح کیوں رو رہی؟ ام ایمن نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں بات تو ضرور ہے. ام ایمن کی زبان حرکت نہیں کر رہی. آخر رسول کو ایک جملہ کہنا پڑا جو علم رسالت کا حصہ. پیغمبر نے کہا کہ اے ام ایمن، مجھے پتا ہے کہ ریزن کیا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ ڈر رہی ہیں وہ آپ کا ڈر و خوف غلط. سب کچھ پیغمبر نے بتا دی، لیکن چونکہ پورا محلہ آیا تھا ام ایمن کے ساتھ، کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی، اور مجھے پتا ہے کہ کیا ڈر اور خوف آپ کے دل میں، اور میں ابھی سے بتاتا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسا نہیں. اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ سننے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی، لیکن ام ایمن تو تھوڑا سمجھی کہ جو میرے دل کا خیال ہے وہ غلط. گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک خواب میں نے دیکھا ہے جو بتانے کا دل نہیں چاہ رہا، برا خواب. خالی برا خواب نہیں ہے، یہ خواب عموماً وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اس خواب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ میرے دل میں آپ کی دشمنی ہے، بولا نہیں جا رہا مجھ سے یہ خواب. پیغمبر مسکرائے، کہا یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کا خیال ہے وہ غلط خیال ہے، بتائیے وہ خواب کیا. اور اس میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب ذرا ام ایمن کو اور حوصلہ مل. کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 3 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے حجرے میں زمین پر بیٹھی اور آپ میرے قریب سے گزرے، اور آپ کے بدن کا، باڈی کا ایک پارٹ کٹ کر میری گود میں آ کے گرا. اب یہ خواب عموماً دشمن لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بدن کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا. جب آپ کو کسی کے خلاف دشمنی اور نفرت ہو، وہ خواب میں اس طرح کا خواب نظر آتا. تو ام ایمن گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ، کیا میں نعوذ باللہ آپ کی دشمن، کیا میں آپ کی جان کے در پہ ہوں، کیا میں آپ کی باڈی کو کٹ کرنا چاہتی ہوں، کیا میں نے خواب دیکھا، اور کبھی نہیں دیکھا، اور اس وقت اس بڑھاپے میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹا، آپ کے بدن، اور میری گود میں آ کے گرا. پیغمبر نے کہا یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ اللہ آپ کو ایک بڑی نعمت دے رہا ہے. ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں میرا وہ بیٹا پیدا ہونے والا جو ہر اعتبار سے میرا حصہ ہے، وہ میرا جز ہے، اور چونکہ وہ آپ کی گود میں بھی کچھ عرصے پلے گا، اس لیے خدا نے یہ آپ کو خوشخبری سنائی. تو اس خواب نے بتایا کہ حسین خالی رسول کے نواسے نہیں ہیں، رسول کا اپنا حصہ ہے، رسول کا اپنا جز ہے، رسول کا اپنا پارٹ ہے، کار رسالت کے اندر شریک نہیں ہے، خود گویا کار رسالت میں شامل ہے. تبھی پیغمبر نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ٹکڑا ہے. حسین کی ولادت کی خوشی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ رسول خدا کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. پارٹ ہے رسول خدا کا حسین، جز ہے رسول خدا کا حسین. دنیاوی رشتے اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ہر اعتبار سے رسالت کی تمام خصوصیات کو لیے ہوئے ہیں. یہ تو ام ایمن کی پریشانی تھی، وہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. حسین کی ولادت کے موقع پہ ماں بھی بہت پریشان ہے، کربلا کی روایت سننے سے پہلے سے करबला तो बाद में सुनी जब बाप ने तफसील बताई। हुसैन की विलादत से पहले हुसैन की वजह से फातिमा भी बहुत परेशान। फातिमा क्यों परेशान? विलादत हुसैन के दिन यानी 2nd of शाबान एक बार पैगंबर सुबह शाम बेटी के घर में आते हैं, बल्कि बाद रिवायतों में है कि हर नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो अपने हुजरे से नहीं जाते, पहले बेटी के हुजरे में आते हैं, वहां से तैयार होकर जाते हैं, और हर नमाज पढ़ा के वापस पहले फातिमा के हुजरे में आते हैं और फिर अपने हुजरे में जाते हैं। इसमें मेरी एक पूरी तकरीर है। गोया एक पैगाम है कि अल्लाह के पास जाना है तो फातिमा के जरिए से जाना होगा। अल्लाह का रसूल हर नमाज से पहले अपनी बेटी के हुजरे में जाता, और फिर मैं इसके साथ मदीने की मस्जिद के बाबे जिब्राइल को मिला देता हूं, लेकिन ये बहरहाल इंशाल्लाह किसी और मौके पर। अभी सिर्फ इतनी सी बात कि देखा कि जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आ रहा, यानी लास्ट वीक ऑफ रजब और फर्स्ट 2 डेज ऑफ शाबान, फातिमा की परेशानी बढ़ती जा रही। पैगंबर ने एक मरतबा सवाल किया, बेटी क्या तुझे बेटे की विलादत पे खुशी नहीं है? कौन मां ऐसी है जो बेटे की विलादत पे खुश नहीं हो? तू तो बहुत परेशान नजर आ रही। कहा, बाबा अब उम्मे ऐमन तो खैर गैर मासूमा थी, इसलिए तो बहुत ही घबरा रही। शहजादी ने कहा, बाबा एक मसला मुझे बहुत परेशान कर रहा, मुझे अपना ये बेटा बहुत प्यारा है लेकिन हसन भी मुझे बहुत प्यारा। हसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं, जितनी रिवायतें आप देखेंगे फजाइल के एतबार से हर जगह दोनों को साथ मिलाया गया। तो अब मां के लिए यह बड़ा मुश्किल हो, और फातिमा जैसी मां के लिए कि एक औलाद अफजल निकले और दूसरी औलाद फजीलत में कम हो जाए, फातिमा की परेशानी देखी तो शायद आपको सही मानों में इस विलादत की, हुसैन की विलादत की सही खुशी पता चले। यकीनन सबसे बड़ी खुशी तो खुद आका हुसैन की विलादत, लेकिन उसके साथ कुछ पैगाम है, वो ये रिवायत बस आखिरी जुमले मेरे, और वो ये कि बेटी ने कहा, बाबा इस वक्त मेरे शिकम में जो बच्चा है बहुत खुशी है, लेकिन क्या नऊज़ु बिल्लाह मेरे हसन में कोई कमी है? पैगंबर ने कहा, बेटी ये तूने क्या कह दिया, बल्कि तारीख को ये बताती है कि हसन की इमामत में हुसैन रहे हैं, हुसैन की इमामत में हसन नहीं रहे। इतने एहतराम के साथ हुसैन हसन के सामने बैठते, 9 साल हसन हुसैन के इमाम रहे। तो खैर, कहा कि बेटी तेरे हसन में कोई खराबी कोई कमी नऊज़ु बिल्लाह नहीं, रुतबे में दोनों बराबर। कहा, बाबा तो क्या बात है कि जब हसन मेरे शिकम में था तो, अब ये कुछ वक्त कम रह गया तो अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर कोई लफ्ज 19-20 हो जाए तो उसको मेरी गलती समझ के माफ कीजिएगा। हसन जब था तो मैं थी, मैं का क्या मतलब है कि शहजादी फातिमा के चेहरे से हर वक्त एक खास नूर जाहिर होता, तभी शहजादी का लकब है जहरा। जहरा का तर्जुमा अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, लेडी ऑफ लाइट। तो लेडी ऑफ लाइट क्योंकि शहजादी के चेहरे पे हर वक्त एक नूर रहता। हाँ, ये अलग बात है कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज होता था, फज्र को कुछ और, जोहर को कुछ और, मगरिब को कुछ और, लेकिन शहजादी के हवाले से अब आजकल इतनी मजलिसें पढ़ी जाती हैं कि सारी हदीसें आप सुन चुके हैं। तो जब हसन मेरे पेट में था तो हसन का एक नूर मेरे चेहरे पर आया, लेकिन मेरा हुसैन मेरा नूर बहरहाल हसन से ज्यादा रहा, और होना भी चाहिए, फातिमा का रुतबा है। लेकिन हुसैन मेरे शिकम में है तो हुसैन का नूर मेरे नूर से बढ़ गया, हसन का नूर मेरे नूर से नहीं बढ़ा था, हुसैन का नूर मेरे नूर से बढ़ गया। मां को अपनी कोई फिक्र नहीं है, यह वाहिद रिश्ता है जहां हर मां चाहती है कि औलाद मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन परेशानी यह है कि हसन का नूर कम क्यों था, हुसैन का नूर ज्यादा क्यों है? ज्यादा नूर पे एतराज नहीं है, उसका कम क्यों है कि हसन में नऊज़ु बिल्लाह कोई कमी या खराबी? तो पैगंबर ने मुस्कुरा के एक जवाब दिया, और यह जवाब बता रहा है कि 3 शाबान की असल खुशी क्या, हुसैन की विलादत। लेकिन साथ में यह भी कहा कि बेटी एक वजह है, वजह यह है कि हसन का नूर अकेला नूर है, वो जब आया तो तेरे नूर के मुकाबले में कम रहा, हुसैन का नूर अकेला नूर नहीं है, हुसैन के नूर के साथ वो नौ नूर और भी जमा हो गए जो औलादे हुसैन में इमाम बनने वाले हैं। जब ये नौ के साथ दस नूर हो गए, यहाँ पे एक लाइट जल रही हो और यहीं पे दस लाइटें आप जला दीजिएगा तो फर्क होगा कि नहीं? ये जो दस लाइट जलाने से रोशनी बढ़ी तो पहली लाइट में कोई कमी नहीं थी लेकिन वो अकेले थी, और जब इसमें नौ और बढ़ गई तो कहा बेटी फातिमा हुसैन का नूर अकेला नूर नहीं है, हुसैन के साथ नौ नूर और है। जब ये दस नूर का मजमुआ बना तो ये इतना ज्यादा नूर हो गया कि तुझे ऐसा लगा जैसे तेरा नूर कम है, जैसे हसन का नूर कम है हुसैन का नूर ज्यादा है। तो पैगंबर ने बताया तीन शाबान की सबसे बड़ी खुशी हुसैन इस दुनिया में आए, लेकिन हुसैन का आना खाली हुसैन नहीं आए, वो तो यकीनन सबसे बड़ी खुशी है, मगर हुसैन की खुशी के साथ इसका मतलब यह है कि सज्जाद भी इसी दुनिया में उसी तारीख को आए, इमाम बाकर भी उसी तारीख को आए, इमाम सादिक भी उसी तारीख को आए, इमाम काजिम भी इस दुनिया में आ रहे हैं, इमाम अली रजा भी आ रहे हैं, इमाम मोहम्मद तकी भी आ रहे हैं, इमाम अली उन्नकी भी आ रहे हैं, इमाम हसन अस्करी भी आ रहे हैं, और हुसैन ही का नूर नहीं आ रहा, साथ में इमाम जमाना का नूर भी आ रहा है। और इससे वो तकरीर का बीच का हिस्सा मिला, हुसैन आए तो इमाम जमाना को लेके आए, और जब इमाम जमाना आएंगे तो हुसैन को लेके आएंगे। जब इतनी बड़ी खुशी है तो खुदा की बारगाह में शब जुमा वैसे ही कबूलियत दुआ की रात है, और आज तो इतनी खुशियों का तस्किरा हुआ। खुदा बंदा तुझे सूरह रहमान की आयत की तकमील हुसैन की विलादत की शक्ल में जो हुई, तुझे इस खुशी का वास्ता, तुझे साथ में आने वाले नौ अनवार मुकद्दसा का वास्ता, तुझे अपनी आखिरी हुज्जत जो सारी दुनिया में तेरी तौहीद का पैगाम पहुंचाएगी और तेरे इस्लाम का निजाम कायम करेगी, उस इमाम जमाना का वास्ता, और इन तमाम खुशियों में फातिमा जहरा की खुशी का वास्ता, अली मुर्तजा की खुशी का वास्ता, मोहम्मद मुस्तफा की खुशी का वास्ता, हसन मुश्तबा की खुशी का वास्ता, जो लोग आज की महफिल में बैठे हुए खुदा बंदा इन्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें सारी बरकतें सारी खुशियां अता फरमा। खुदा बंदा साहिबान ईमान को गमे हुसैन और गमे अहले बैत के अलावा हर गम हर मुसीबत हर परेशानी दुश्मनों के हर शर रोजी के हर मसले सेहत के हर मसले औलाद की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा हमारे तमाम मरहूमिन खासतौर पर आज की मजलिस की अगर कोई बानी है तो उनके खानदान के तमाम मरहूमिन, वो मरहूमिन जिनके नाम इमाम बारगाह की इस दीवार पर लिखे हुए हैं, खुदा बंदा ये मरहूमिन और हाजरीन महफिल मर्दों और औरतों के खानदान के तमाम मरहूमी इन सब को आलाइल्लीन में अली और फातिमा के साथ मशहूर फरमा और ये खुशी वहां मनाने की तौफीक अता फरमा। खुदा बंदा दुनिया में जहां जहां दुश्मन आने अहले बैत सिर्फ और सिर्फ औलाद फातिमा की मोहब्बत में हम पर जुल्म कर रहे हैं, खासतौर पर यह कोयटा का वाकया, फिर कराची में आज भी दो शहादतें हुई और पारा चिनार और गिलगित और बल्तिस्तान और डीआई खान और बहरैन और सीरिया, यहां तो आप सुनिए खुदा बंदा इन सारे जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, इनकलाब इस्लामिया ईरान की हिफाजत फरमा, हमारे तमाम उलमा और मराज खसूसन मर्जे वक्त आगा सिस्तानी और रहबर मुस्लिमीन आगा खामेनाई के साए को हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा, हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। खुदा बंदा जहां कहीं कोई कोताही हो जाए तुझे हमारे आंसुओं का वास्ता हुसैन और हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा की शफात और मदद नसीब फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए हुसैन के वारिस हुसैन के नूर के साथ इस दुनिया में आने वाली अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के जुहूर में ताजील फरमा। शब जुमा वैसे ही हम अपने मरहूमीन को याद करते हैं, आज की तकरीर का उनवान भी ऐसा बना, कोयटा में जायरीन ज़ियारत करके अपने घर भी नहीं पहुंचे थे उनकी शहादतें भी हुई, तो एक सूरह फातिहा तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात खुसूसन जितने शोहदाए मिल्लत शोहदाए इस्लाम हैं और आज ही के दिन जो शहादतें हुई और ये जो पीछे मरहूमीन के नाम लिखे हुए हैं और जितने लोग आज की इस महफिल में आए इनके खानदान के तमाम मरहूमीन और बानिए मजलिस के खानदान के तमाम मरहूमीन फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीनर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين। एक मरतबा इस विलादत के बयान के हवाले से बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।